ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। पेरिस पैरालंपिक में भारत की शानदार शुरुआत हुई है। निशानेबाजी में आज दो पदक जीते। अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 249.7 का स्कोर किया। इस स्पर्धा का कांस्य पदक मोना अग्रवाल को मिला। उन्होंने 228.7 अंक अर्जित किए। अवनी ने अपना ही पैरालंपिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। टोक्यो पैरालंपिक में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अवनी 3 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में वाढवण बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी और 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वाढवण बंदरगाह परियोजना की कुल लागत लगभग 76,000 करोड़ रुपए है। श्री मोदी ने कहा कि इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय प्रवेश द्वार विकसित करना है। सरकार वाढवण पोर्ट को रेलवे और हाईवे से जोड़ेगी और ये पोर्ट कंटेनर जहाजों की जरूरतों को भी पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन महाराष्ट्र की विकास यात्रा का ऐतिहासिक दिन है। इससे पहले मुंबई में वैश्विक फिनटेक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का फिनटेक दुनिया भर के लोगों का जीवन सुगम बनाने के लिए काम कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत द्वारा फिनटेक को अपनाना गति और पैमाने की दृष्टि से विश्व में बेजोड़ है। दुनिया भर के तत्काल डिजिटल लेनदेन भारत में हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय सेवाओं के लोकतंत्रीकरण में फिनटेक ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल लेनदेन से समानांतर अर्थव्यवस्था को समाप्त करने और बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में फिनटेक से जो परिवर्तन आए हैं वे प्रौद्योगिकी मात्र तक सीमित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इन परिवर्तनों का सामाजिक प्रभाव दूरगामी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि अगर महिलाओं के विकास में भागीदारी नहीं होगी तो देश वांछित विकास हासिल नहीं कर सकता। दिल्ली विश्वविद्यालय के भारती कॉलेज में श्री धनखड़ ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अब पाकिस्तान के साथ बातचीत का समय नहीं रहा। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के संदर्भ में भारत पूरी तरह सचेत है। हर कार्यवाही के परिणाम होते हैं। घटनाक्रम चाहे अच्छा हो या बुरा, भारत अपनी प्रतिक्रिया देगा। बांग्लादेश के बारे में उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश में राजनीतिक बदलावों के बीच भारत को अपने हितों पर ध्यान देना होगा। सरकार ने आज एकल सरलीकृत पेंशन आवेदन पत्र जारी किया और भविष्य पोर्टल का EHRMS के साथ डिजिटल एकीकरण किया गया। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी शुरुआत की। इसका उद्देश्य पेंशन भोगियों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना है। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकारें कुशासन और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा कि देश के 9 पर्वतीय राज्यों में हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति सबसे खराब है। श्री शुक्ला ने कहा कि कर्नाटक में परिवहन कर्मचारियों का वेतन उनके खातों में जमा नहीं किया गया, जिसके कारण उन्हें हड़ताल पर जाना पड़ा। उन्होंने कर्नाटक में भी कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। मौसम विभाग ने कहा है कि गुजरात में कच्छ क्षेत्र के ऊपर बने गहरे दबाव के चक्रवात में बदलने की आशंका है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक आवाजाही से बचने का आग्रह किया है। मछुआरों को अगले 3 दिन के दौरान समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। कल हुई मूसलाधार बारिश के बाद मोबाइल नेटवर्क बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।